दिन भर एक नवंबर दिन मंगलवार, मैं हूँ रेहान फदल। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा एनआईए सिमी कार्यकर्ताओं के जेल से भागने की जांच करेगा, एनकाउंटर की नहीं।
कहां से इनको ये सारा संपर्क थे, क्या नेटवर्क था, ये पूरा एनआईए जांच करेगा, एनआईए एनकाउंटर की जांच नहीं करेगा।
देखेंगे मराठा आंदोलन में किस तरह लड़कियां बढ़ चढ़कर ले रही हैं भाग।
हमने डिमांड्स आपको बताए हैं, लाइक आरक्षण वी वांट, देन कोपर्डी केस के लिए हमें न्याय चाहिए उस लड़की के लिए।
चर्चा होगी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम के होने वाले चयन पर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि वे भोपाल में 8 सिमी कार्यकर्ताओं से कथित मुठभेड़ मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से नहीं कराएगी। राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी केवल सिमी सदस्यों के जेल से फरार होने की जांच करेगी। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 8 विचाराधीन कैदी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर स्वयं संज्ञान लेते हुए इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, जेल के डीजी और आईजी को नोटिस जारी कर उनसे 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। इराकी सेना मोसुल के पूर्वी क्षेत्र के बाहरी इलाकों में पहली बार प्रवेश कर गई है। यहां इराकी सेना इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। इस इलाके को इस्लामिक स्टेट ने 2 साल पहले अपने कब्जे में ले लिया था। इस पूरी कार्रवाई पर रिपोर्टिंग कर रहे बीबीसी संवाददाता का कहना है कि आईएस रॉकेट, मोर्टार और मशीन गन के जरिए इराकी सेना के हमले का कड़ा जवाब दे रही है, लेकिन इराकी सेना ने कुकजाली इलाके में बढ़त बना ली है। इस बीच दक्षिण मोसुल से ये रिपोर्ट आ रही है कि आईएस वहां लोगों को हत्या और उनको अगवा कर रही है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की प्रवक्ता रवीना शमदवसानी का कहना था,
We have further reports of mass killings by ISIL. On Saturday, 40 former Iraqi security forces
soldiers हमें रिपोर्ट मिल रही है कि शनिवार को ISIL ने बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं की हैं। उन्होंने 40 पूर्व इराकी सुरक्षा बलों की हत्याएं की और उनके शव तिग्रिस नदी में फेंक दिए। ये उन आम नागरिकों में शामिल थे जिन्हें मोसुल के उप जिला अलशूरा से अगवा किया गया था। ये थे रवीना शमदसानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी के नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने सरकार के खिलाफ अपनी बड़ी रैली को रद्द कर दिया है। ये रैली कल इस्लामाबाद में आयोजित होनी थी। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के समर्थक जश्न रैली आयोजित करेंगे। इमरान खान ने ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर की जिसमें कोर्ट ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करेगा। इससे पहले इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए झड़पें हुई और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की थी। भारत प्रशासित कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलीबारी की जिसमें 7 आम नागरिक मारे गए हैं। मरने वालों में 16 साल की एक लड़की भी शामिल है, वहीं 15 लोग घायल बताए गए हैं। ये घटना आज सुबह 7 बजे हुई। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। सेना का दावा है कि उसने पाकिस्तान की 4 चौकियों को बर्बाद कर दिया। चीन में कोयले की खान में बड़े पैमाने पर राहत अभियान चल रहा है, जहां सोमवार को जमीन के नीचे हुए विस्फोट के कारण करीब 20 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। मध्य प्रदेश में 8 सिमी कार्यकर्ताओं की कथित मुठभेड़ के बाद भोपाल में राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जहां विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि मुठभेड़ की जांच की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की राज्य इकाई ने पूरी मुठभेड़ को फर्जी और दिखावटी करार दिया है। दिल्ली से एनआईए की टीम भी जांच के लिए भोपाल पहुंच गई है। भोपाल से शुरे नियाजी की रिपोर्ट।
सिमी कार्यकर्ताओं की कथित मुठभेड़ पर उठ रहे सवालों के बीच भोपाल में आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मारे गए हवलदार रमाशंकर यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही। वहीं उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो शहीदों की शहादत पर राजनीति कर रही है।
लेकिन मेरे मन में एक तकलीफ थी, मुझे पता नहीं कि राजनीति कैसी हो गई है। हमारे देश के ही कुछ ऐसे नेता उनको शहीदों की शहादत दिखाई नहीं देती, उनको रमाशंकर यादव का बलिदान दिखाई नहीं देता। यही आतंकवादी थे जिन्होंने पहले रतलाम में शिव प्रताप कुशवाहा की हत्या की, जो हमारे जवान, इन्होंने खंडवा में सीताराम यादव की हत्या की, और यहाँ इन्होंने रमाशंकर यादव की हत्या की। दो शब्द अगर इनके लिए भी बोल दिए जाते तो ये लगता है कि मन संवेदनाओं से भरा हुआ है। लेकिन घटिया राजनीति, हर तरह की घटना, इस तरह की घटना पर करना, वोट बैंक की राजनीति करना, अभी दुर्दांत आतंकवादी थे।
उधर राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि 8 सिमी कार्यकर्ताओं से मुठभेड़ की जांच एनआईए नहीं करेगी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एनआईए केवल सिमी सदस्यों के जेल से फरार होने की जांच करेगी।
सरकार की किसी भी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा इनकाउंटर का डिटेल कल भोपाल पुलिस के जो हमारे आईजी हैं, उन्होंने बड़ा डिटेल ब्रीफ किया है, सारे फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं कि इनकाउंटर किस तरह से हुआ है। इसलिए किसी भी प्रकार की किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, एनआईए को जो जांच दी है वो इस बात की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है कि जेल से ये जो फरार हुए हैं और ये पूरा इसमें सारा किस तरह से इनके कौन से सूत्र थे, कहां से इनको ये सारा संपर्क थे, क्या नेटवर्क था, ये पूरा एनआईए जांच करेगा। एनआईए एनकाउंटर की जांच नहीं करेगा।
वहीं मध्य प्रदेश की ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की इकाई भी इस मामले में सरकार की कार्यवाही पर उंगली उठा रही है। काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ मसूद ने सीमी कार्यकर्ताओं की मुठभेड़ को पूरी तरह से फर्जी करार दिया और कई सवाल उठाए हैं। उधर सरकार ने भोपाल जेल में बंद सीमी कार्यकर्ताओं और नक्सलवादियों की निगरानी बढ़ा दी है। सरकार ने 3 सहायक अधीक्षक, 9 मुख्य प्रहरी और 27 प्रहरियों की तैनाती की है जो इन पर निगरानी रखेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी 8 विचाराधीन कैदी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर स्वयं संज्ञान लेते हुए इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, जेल के डीजी और आईजी को नोटिस जारी कर उनसे 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
और अब बात हवलदार रमाशंकर यादव की, जो 8 सिमी कार्यकर्ताओं के भोपाल सेंट्रल जेल से भागने के दौरान मारे गए थे। रमाशंकर यादव का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। इस पूरी घटना के बाद परिवार ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन रमाशंकर यादव के छोटे बेटे ने कुछ सवाल जरूर उठाए हैं। पेश है एक बार फिर शुरेनियासी की रिपोर्ट।
8 सिमी कार्यकर्ताओं के भागने के दौरान मारे गए हवलदार रमाशंकर यादव के घर अब मातम पसरा है। रमाशंकर यादव के अंतिम संस्कार के वक्त अधिकारियों और नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रमाशंकर यादव के घर पहुंचे। लगभग 1 माह बाद उनकी बेटी सोनिया यादव की शादी तय थी, लेकिन सारी खुशी अब मातम में बदल चुकी है। सोनिया यादव अब अपने आप को टूटा हुआ पा रही हैं। यादव परिवार के लोग इस हादसे के बाद ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा प्रभु यादव ये मानता है कि सिस्टम में गड़बड़ी का खामियाजा उनके पिता को उठाना पड़ा।
हाँ, ये तो साफ बात है, वही सिस्टम में प्रॉब्लम थी, तभी तो वो बाहर भागे हैं। चेक नहीं हुआ है, उन्हें हथियार बना लिए, चादर निकाल ली, ये सिस्टम की तो गड़बड़ी है और क्या है। अब भाई, मैंने यहाँ तक सुना, हम तो रहते नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कई कई दिनों तक तो कोई उनको चेक करने जाता था, डर के मारे उनके कोई बेरिकों में नहीं घुसता था, सीधा साधा आदमी लगा देते थे उनके ऊपर, मन मर्जी से वो रहते थे।
प्रभु यादव कुछ सवाल भी उठाते हैं।
ये तो लगभग सबको पता है कि मैन पावर नहीं होने के कारण ये हुआ है। अब मैन पावर का वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, वहाँ इतने लोग, कितने लोग कहाँ लागू हैं, किस सेल में कितना बंदी है और कितना उस पर लागू है, मतलब संतरी, वो तो वो डिपार्टमेंट ही जानता, हम तो क्या बता सकते हैं।
उनका ये भी कहना है कि जिस जगह पर उनके पिता की तैनाती थी, उस जगह पर किसी नौजवान को लगाया जाना चाहिए था, न कि उनके पिता जैसे उम्र दराज व्यक्ति को। उनका कहना है कि रमाशंकर यादव हार्ट के मरीज थे और बीमार रहते थे। वहीं आर्मी में हवलदार के पद पर आसाम में पदस्थ बड़ा बेटा शंभू यादव इस मसले पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। उन्होंने कहा,
देखिए, ये तो खैर अपने स्टाफ की बात है, जैसे भी इंक्वायरी होगी, जैसे भी बाद में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, वहाँ पर वो निकले तो बाहर कैसे निकले, ये तो मतलब जो है स्टाफ का काम है, चाहे जैसे भी वो करे। फिलहाल तो मैं भी कल ही आया हूँ और इतना डिटेल में नहीं बता सकता आपको कि क्या कारण है।
भोपाल में सोमवार को सीमी के 8 कार्यकर्ताओं की कथित मुठभेड़ में मौत हो गई थी। ये कार्यकर्ता भोपाल सेंट्रल जेल में दीपावली की रात हवलदार रमाशंकर यादव की हत्या कर जेल से फरार हो गए थे। उसके बाद भोपाल के बाहर इन्हें घेर कर मार दिया गया था। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
दूसरी ओर प्रतिबंधित संगठन सिमी के कथित सदस्यों को फर्जी मुठभेड़ में मारने के आरोप भोपाल पुलिस पर भी लग रहे हैं, लेकिन भारतीय पुलिस पर यह आरोप पहली बार नहीं लगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में पुलिस के खिलाफ 32,498 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 206 मामले इनकाउंटर के थे। 66 इनकाउंटर मामलों के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस इस सूची में सबसे ऊपर थी। इसके बाद असम, झारखंड, उड़ीसा का नंबर था। मैंने विनीत खरे से पूछा कि ऐसे कौन से दूसरे बड़े मामले हैं जिनमें पुलिस पर फर्जी इनकाउंटर के आरोप लगे हैं।
रेहान, इशरत जहां का मामला था 15 जून 2004 को, जब गुजरात पुलिस और अहमदाबाद के स्थानीय इंटेलिजेंस ब्यूरो पर खालसा कॉलेज मुंबई की इशरत जहां, केरल के जावेद गुलाम शेख या प्राणेश पिल्लई और दो कथित पाकिस्तानियों अमजद अली राणा और जीशान जौहर को फर्जी मुठभेड़ में मारने के आरोप लगे थे। उस वक्त इस टीम की अगुवाई अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के उपायुक्त टीजी वंजारा कर रहे थे। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि ये जो कथित चरमपंथी हैं उनका ताल्लुक है वो लश्कर ए तोयबा से था और ये लोग गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या बना रहे थे। सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई ने जांच में पाया कि इस मुठभेड़ को इंटेलिजेंस ब्यूरो और गुजरात पुलिस के आला अफसरों की मिली भगत से अंजाम दिया गया। और आपको खबर ही होगा, हाल में खबर आई है कि इशरत जहां मामले से जुड़ी फाइलें गायब हो गई हैं और पुलिस ने इस बारे में FIR दर्ज की है।
अच्छा, एक और मामला बहुत चर्चित हुआ था, हाशिमपुरा का मामला, और उस पर बहुत तहलका मचा था उस जमाने में। उसके कुछ डिटेल्स हैं आपके पास?
जी, ये हत्याकांड 22 मई 1987 को मेरठ शहर में हुआ था। सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए PAC को बुलाया गया था, लेकिन PAC के जवानों ने शहर का जो हाशिमपुरा इलाका था वहां 42 मुसलमानों को पहले पकड़ा, फिर मार दिया और शवों को पास के नहर में फेंक दिया गया। मुकदमा पहले स्थानीय गाजियाबाद की अदालत में चला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे कहने पर यह मामला 30,000 अदालत में आया दिल्ली में। 2015 में 16 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। अदालत ने माना कि जो 42 लोगों को PAC ले गई थी उन्हें पुलिस हिरासत में मारा गया, लेकिन अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया दरअसल उन्हीं लोगों ने इन मुसलमानों को मारा था, और ये मामला अभी अदालत में चल रहा है।
ये तो रहे दो मामले, इसके अलावा और कौन कौन से मामले हैं?
एक मच्छल हत्याकांड था भारत प्रशासित कश्मीर में, 2010 का मामला है। बारामूला के नदीहाल गांव के रहने वाले तीन व्यक्ति थे, उनको पाकिस्तान से लगे नियंत्रण रेखा के मच्छल सेक्टर है वहां बहला फुसला कर ले जाया गया। उनके नाम थे शहजाद अहमद, रियाज अहमद और मोहम्मद शफी, और उन्हें गोली मार दी गई। बाद में बताया गया कि ये पाकिस्तानी चरमपंथी हैं। करीब एक महीने बाद ये मामला सामने आया, इनका शव जो है वो दफनाया गया था, उसे बाहर निकाला गया, कोर्ट मार्शल किया सेना ने, और कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देवेंद्र कुमार, लांस नायक लक्ष्मी, लांस नायक अरुण कुमार और राइफलमैन अब्बास हुसैन को आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके अलावा बात करें तो सोहराबुद्दीन शेख का मामला था। मीडिया रिपोर्टों में उन्हें बताया गया कि वो अंडरवर्ल्ड के अपराधी हैं और वो हैदराबाद से महाराष्ट्र जा रहे थे, जब गुजरात पुलिस की ATS शाखा ने उन्हें बीच में रोका, दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई और बाद में उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। और आंध्र प्रदेश स्मगलर एनकाउंटर, आपको याद होगा, करीब 20 कथित चंदन तस्करों को गोली मार दी गई थी। पुलिस ने कहा था कि उन पर हमला हुआ, लेकिन मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा और अभी भी हैदराबाद हाईकोर्ट में मामला लंबित है, चल रहा है।
ये थे PBC संवाददाता विनीत खरे।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी और फायरिंग की ताज़ा घटनाओं में 5 महिलाओं समेत 7 नागरिक मारे गए, जबकि LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग में एक सैनिक की मौत हो गई है। सेना और PSF का कहना है कि इन हमलों का भरपूर जवाब दिया गया है। उधर पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय फायरिंग में उसके 3 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच घाटी में बंद और हिंसक घटनाओं के कारण आम जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
जम्मू क्षेत्र के सांबा जिले में रामगढ़ सेक्टर के निकट आज सुबह उस समय आतंक फैल गया जब सीमा पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच जबरदस्त गोलाबारी हुई। पाकिस्तानी हमले में अब तक 5 महिलाओं समेत 7 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 15 अन्य घायल हैं। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों रामगढ़, सांबा और हीरानगर की कई बस्तियों में फायरिंग और गोलाबारी से दहशत फैल गया है। लोगों का कहना है कि ऐसी खतरनाक स्थिति के बीच वो प्रशासन के अस्थायी शिविरों का इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए बस्तियां छोड़कर पलायन कर रहे हैं।
कुमोर एरिया के अंदर ऐसे कोई भी इस प्रकार के हादसा हमने देखा नहीं है। ये पहली बार है जो गांव के अंदर जो है ये दो बम फटे हैं।
हम बाल बच्चा कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? और उधर से सर्दी का जमाना है, बाकी जमीने हरी वो खत्म हो गई, हम इधर क्या रहकर करेंगे भी क्या?
फायरिंग जो मार्टर गन के फायर है वो हमारे गांव में पड़े और गांव के बीच पड़े, इधर नुकसान हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम अभी आज हम शाम को ये गांव छोड़ के जाएंगे पीछे।
उधर राजौरी और पुंछ जिलों के मंजकूट और मेंढर के सीमावर्ती सेक्टरों में भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, जिसके दौरान सेना के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की कई पोस्टों को निशाना बनाया। सेना के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने 82 और 120 एमएम के गोले दागे, जिनकी जद में आकर राइफलमैन बिमन तमांग नामी सिपाही मारा गया। मेंढर में ही कल भी पाकिस्तानी फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई दूसरे नागरिक घायल हो गए थे। बीएसएफ का कहना है कि शेलिंग का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उधर पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय फायरिंग से 3 आम नागरिक मारे गए हैं। गौरतलब है 29 सितंबर को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही है। ताहम बीएसएफ और सेना कहती है कि इन हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। आज भी बीएसएफ ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में पाक रेंजर्स की 4 पोस्टों को तबाह कर दिया गया। इस बीच घाटी में 2 दर्जन से अधिक स्कूलों के आग की संदिग्ध घटनाओं में जल जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। अलगाववादी और प्रशासन एक दूसरे पर आरोप थोप रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से परीक्षाओं की घोषणा से भी छात्रों में आक्रोश है। कल ही दक्षिणी जिला पुलवामा में तलाशी अभियान के दौरान लोगों ने प्रदर्शन किए तो सुरक्षा बलों ने एक बार फिर पैलेट गन्स का प्रयोग किया, जिसके कारण 30 लोग घायल हो गए। घायलों में 7वीं और 10वीं कक्षा की छात्राएं भी हैं। इनके परिवार वाले कहते हैं,
ये 8th क्लास में पढ़ती हैं उत्तरी रोहमों में शेखुल आलम स्कूल में। कैसे देखेंगे जब नईम साहब इसको देखेंगे, इसका आंखों का बीना ही चढ़ गया, फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे? जो इधर बैठा हो उसका 10th का एग्ज़ाम है, वो उसका भी 10th का एग्ज़ाम है, इसका 8th का एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन कौन करेंगे जब सबको आँखों का ये गया, ये फिर ये प्रिपरेशन नहीं करते हैं।
गौरतलब है कि 8 जुलाई को एक एनकाउंटर में चरमपंथी नेता बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में भारत विरोधी आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की तीव्रता कम तो हुई है, लेकिन आम जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मोसल में बढ़त बनाती हुई अमरीका समर्थित इराकी सेनाएं शहर की सरहद से महज 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई हैं। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने इस्लामिक स्टेट को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
We're moving along now inside a heavily armored Humvee. You can see there are two men.
यह आवाज मोसुल में इराकी सेना के मोर्चे पर एक टैंक में मौजूद BBC संवाददाता इयान पैनल की है।
Firing large caliber weapons.
मैं अभी भारी हथियारों से लैस एक टैंक में इराकी जवानों के साथ हूं। दो सिपाही सामने वाली सीट पर बैठे हुए हैं। पीछे यह आदमी टैंक के ऊपर से बड़े बड़े हथियारों को संचालित कर रहा है। हम लोग अब बाजवाया कस्बे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से मोसुल को आसानी से देखा जा सकता है।
इसके ठीक बाद अमरीकी नेतृत्व की इराकी सेनाओं ने बाजवाया कस्बे पर कब्जा कर लिया और वे मोसुल से एकदम करीब आ पहुंची हैं।
आतंक विरोधी सेनाओं के लिए आज का अभियान काफी सफल रहा है। वे मोसुल शहर से ठीक पहले मौजूद कस्बे पर कब्जा कर चुके हैं। आज का अभियान यहीं खत्म हो गया है और अब ये सेनाएं इस्लामिक स्टेट के केंद्र से महज 1 मील की दूरी पर हैं।
BBC संवाददाता इयान पैनल के शब्द। पैनल ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके भी विस्फोटकों से भरे वाहन लेकर अमरीकी समर्थित इराकी सेनाओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन यह आक्रामक अभियान इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को पीछे धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इधर इराकी सेनाओं के मोसुल से बेहद नजदीक पहुंच जाने से उत्साहित इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी सैन्य वर्दी पहने सरकारी TV चैनल में दिखाई दिए। यहाँ उन्होंने इस्लामिक स्टेट को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। ईश्वर की शुभकामनाओं से हम इस्लामिक स्टेट के काफी करीब पहुँच गए हैं और जल्द ही हम इस सांप का फन काट देंगे। इनके पास बचकर निकलने का कोई चारा नहीं बचा है, या इन्हें आत्मसमर्पण करना होगा या ये मारे जाएंगे। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के शब्द। इस बीच दक्षिणी मूसल से इस्लामिक स्टेट द्वारा लोगों की हत्या करने और बंधक बनाए जाने की भी खबरें आ रही हैं। जिनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र की एक प्रवक्ता रवीना शदासिनी ने ताज़ा जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा है कि हजारों नागरिकों को मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं कि कल सुबह दक्षिण मूसल के हमाम अल अलिल में इस्लामिक स्टेट दर्जनों लंबे ट्रक और मिनी बसें लेकर आया है, जिनमें भरकर तकरीबन 25,000 नागरिकों को मूसल शहर के अलग अलग इलाकों में मानव ढाल बनाने के लिए ले जाया जाना है। हालांकि ऐसी कुछ बसें हमाम अल अलिल वापस लौटने पर मजबूर हुई हैं, क्योंकि गठबंधन सेनाओं के जहाज इलाके में पेट्रोलिंग चलाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता रवीना शदासिनी के शब्द। इराकी सुरक्षा बल अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मूसल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए पिछले 16 दिनों से एक विशेष अभियान चलाए हुए हैं।
इराकी सेनाएं मूसल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। महाराष्ट्र में जारी मराठा आंदोलन में लड़के और लड़कियां बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कई शहरों में हो चुके मराठा समुदाय के मूक प्रदर्शन में लड़कियां सबसे आगे रहती हैं। सभी ये जानना चाहते हैं कि ये लड़कियां कौन हैं जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इसका नेतृत्व भी कर रही हैं। सुबैर अहमद की रिपोर्ट।
कोल्हापुर में एक बड़े से हॉल में एक साथ कई लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। वहां उनमें उत्साह था, जोश था, उम्मीद थी। वहीं हमारी मुलाकात 17 वर्षीय मानसी नितिन सरनोबत से हुई। मानसी उन 5 लड़कियों में शामिल थीं जिन्हें मोर्चे की तरफ से प्रशासन को अपनी मांगों की लिस्ट देनी थी। उन्होंने मुझे बताया,
बहुत अच्छा लगा है सर, मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है और इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं इसमें शामिल हुई।
अगस्त महीने से जारी मराठा आंदोलन के सभी मोर्चों का नेतृत्व लड़कियों की 2 टीमें कर रही थीं। एक टीम का काम मोर्चे में मांगों को पढ़कर सुनाना था, दूसरी टीम मांगों की लिस्ट प्रशासन को सौंपती है। मानसी के तत्काल आंदोलन में शामिल होने का कारण था, 13 जुलाई को कोपरडी गांव में एक 14 वर्षीय मराठा लड़की का बलात्कार और इसकी हत्या। इसके बाद से ही मराठा समाज सड़कों पर आ गया। हालांकि उस मामले में न्याय मिलने के साथ साथ मराठा आंदोलन आरक्षण की मांग भी कर रहा है।
जब मैंने कोपरडी प्रकरण लोकमत या किसी पेपर में पढ़ा तो मुझे अंदर से इतना गंदा फील हुआ, उस पढ़ने के बाद में इसमें ज्वाइन हो गया।
इस कांड के विरोध में अपनी नाराजगी जताने के लिए मानसी मोर्चे में काली शर्ट पहनकर आती हैं। इस बड़े हॉल में मौजूद मानसी की उम्र की ऋतुजा मानिक पाटिल भी थीं, जो अपने अंदर का जोश दबा नहीं पा रही थीं। वो मोर्चे में भाषण देने वाली टीम में शामिल थीं।
We have to face the media, we have to face the people, और हमें जो चाहिए वो हम पाके ही रहेंगे।
क्या पाना चाहती हैं?
हमने डिमांड्स आपको बताए हैं, लाइक आरक्षण वी वांट, देन कोपरडी केस के लिए हमें न्याय चाहिए उस लड़की के लिए और एट्रोसिटी के बारे में।
वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ एकजुट होकर कहती हैं कि मराठा युवाओं में नाराजगी इसलिए है क्योंकि औरों को मिल रहे आरक्षण के कारण उनके समाज में गुनी लोगों को भी अवसर नहीं मिलता। इसलिए स्थानीय स्कूल की अध्यापिका आरती बाबूराव देवड़े भी चाहती हैं कि मराठों को आरक्षण मिले।
जय जिजाऊ, जय शिवराय। नमस्ते, मेरा नाम आरती बाबूराव देवड़े, मैं एक हाई स्कूल में टीचर का काम करती हूँ और मैं एक मराठा हूँ, इसलिए मैं इस मेरी बहुत सारी मेरे जो भाई बहन इस लड़ाई में शामिल है, इसलिए मैं एक मराठा हूँ, इसलिए मैं मेरे इस लड़ाई में शामिल हो गई हूँ। क्योंकि युवा वर्ग ही बहुत सारी इस डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं। हमारे आज हम लोगों को 95-98% मार्क मिलते हैं, फिर भी हम लोगों को ओपन है, मराठा ही है, इसलिए हमें एडमिशन्स नहीं मिलते हैं स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन हमारे ही फ्रेंड 45-60% मार्क लेकर आगे जाते हैं।
आरती खुद को भी आरक्षण प्रणाली का पीड़ित मानती हैं।
मेरा एग्जांपल लीजिए, मेरे 12th के बाद मुझे एडमिशन नहीं मिला, पूरी फील्ड चेंज की और मेरे लाइफ को एक अलग टर्न आ गया। किस वजह से हुआ? आरक्षण की वजह से। मराठा समाज को आरक्षण नहीं है, इस वजह से ही हो रहा है।
लड़कियों के साथ महिलाएं भी मराठा मोर्चे में आगे हैं। सच तो ये है कि इसमें लोग पूरे परिवार के साथ शामिल हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विलास सोनावने कहते हैं,
पूरे फैमिली के साथ जुलूस में हो जाना ये आदिवासियों की खासियत रही है। पहली बार मराठा समाज पूरी फैमिली के साथ आ रहा है।
उससे भी अहम ये है कि युवतियों को मोर्चों का नेतृत्व सौंप दिया गया है। मराठा समाज के बुजुर्ग कहते हैं कि इसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि कोपड़ी की पीड़ित एक 14 साल की लड़की थी जिसके बलात्कार और हत्या से मराठा युवाओं को काफ़ी झटका लगा है, खासतौर से लड़कियों को। दूसरी वजह यह है कि मराठा समाज में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी का असर आम परिवार पर हुआ है। वो अपनी मजबूरी और बेहाली मोर्चे निकाल कर बता रहे हैं। युवा अपनी पढ़ाई और स्कूल छोड़कर मोर्चों में शामिल हो रहे हैं। आंदोलन में शामिल होने के फायदे के बारे में मानसी की माँ कहती हैं,
उसमें कॉन्फिडेंस बहुत सा आ गया है, पहले से ज्यादा आया है।
मानसी से मिलने पर उनके आत्मविश्वास का जरूर पता लगता है। जुबैर अहमद, BBC, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।
भारत और इंग्लैंड अगले बुधवार से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में आमने सामने होंगे। पहला टेस्ट मैच सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन कल होगा। 30 गेंदबाज ईशान शर्मा फिट हो गए हैं, जबकि सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाकर वापसी को कामयाब बना चुके हैं। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम नंबर 1 पर बनी हुई है। भारत के 115 अंक हैं। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है जिसके 111 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया 108 अंकों के साथ तीसरे और इंग्लैंड के भी 108 अंक हैं, लेकिन वो चौथे पायदान पर है। अब यही चौथे पायदान की इंग्लैंड और पहले पायदान की भारत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में आमने सामने होंगी। एक तरफ जहां भारत ने पिछले दिनों अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड जैसी जुझारू माने जाने वाली टीम को टेस्ट सीरीज में 3-0 से मात दी, तो इंग्लैंड को बांग्लादेश की जमीन पर न सिर्फ पहली बार हार के कड़वे घूंट को पीना पड़ा, बल्कि 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद 1-1 से बराबरी पर रहने को भी मजबूर होना पड़ा। भारत दौरे के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन शुरुआती 3 टेस्ट मैचों के लिए उसके सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन शामिल नहीं है। जेम्स एंडरसन की कमी इंग्लैंड को भारी पड़ सकती है, ऐसा मानते हैं क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली।
याद है नागपुर में जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, मैंने बहुत बहुत सालों में देखा कि सचिन जो है बिल्कुल क्लूलेस थे, उनको समझ ही नहीं आई क्या बॉल थी वो, और एंडरसन के ना होने से इंग्लैंड का अटैक बहुत कमजोर लगेगा नई बॉल के साथ।
दूसरी तरफ इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली भारतीय टीम का चयन कल किया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेज गेंदबाज ईशान शर्मा की टीम में वापसी होती है या नहीं। इसके अलावा अमित मिश्रा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में 15 विकेट लेकर टेस्ट टीम में खेलने का अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने अपने ही दम पर न्यूजीलैंड का सफाया कर दिया था। विजय लोकपल्ली कहते हैं,
अमित मिश्रा मैं चाहूंगा वो डेफिनेटली अपनी जगह बन सकती है, और जहां तक ईशान का सवाल है वो फॉर्म की वजह से नहीं गए थे, वो तो चिकनगुनिया हो गए थे, टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। अगर वो फिट है उनका फिटनेस लिया जाएगा, हालांकि 2 मैचेस खेले उन्होंने, और अभी मैं मोहाली में था, दिल्ली उड़ीसा का मैच कवर कर रहा था, वहां पे भी ईशान ने बहुत तब से बॉल डाला, फिट है वो, और ईशान की जगह बननी पड़ेगी आपके आज भी है।
इसके अलावा सलामी बल्लेबाज KL राहुल और शिखर धवन को टीम में जगह बनाने के लिए फिटनेस टेस्ट को पास करना होगा। गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में अर्धशतक जमा कर वापसी का जश्न मनाया था। ऐसे में कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले किसे वरीयता देते हैं, ये एक सवाल है जिसका जवाब देते हुए विजय लोकपल्ली कहते हैं,
अनिल कुंबले विराट कोहली वो कॉम्बिनेशन रखते हैं, उनको ऑपोजिशन को भी आंकना पड़ेगा क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड में फर्क है, गंभीर नए फॉर्म में है, अगर एक्सपीरियंस फैक्टर चाहिए वो आ सकते हैं, और शिखर धवन को आने के लिए पहले तो फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा।
अब सवाल के जवाब जो भी हो, लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट टीम के चयन को लेकर कप्तान, कोच और चयनकर्ताओं के बीच माथापच्ची होगी तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत ही माना जाना चाहिए।
भारतीय टीम के चयन पर कयास और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि वे भोपाल में 8 सिमी कार्यकर्ताओं से कथित मुठभेड़ मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से नहीं कराएगी। राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी केवल सिमी सदस्यों के जेल से फरार होने की जांच करेगी। इराकी सेना मोसुल के पूर्वी क्षेत्र के बाहरी इलाकों में पहली बार प्रवेश कर गई है। यहां इराकी सेना इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी के नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने सरकार के खिलाफ अपनी बड़ी रैली को रद्द कर दिया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे मनीष जालवी, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।